हमारे तो विषय केवल एक ही है, तो उस विषय पर ही चर्चा करते हैं, बल्कि साधारण रूप से बेसिक्स जो साधारण विचार है उस विचार पर ही चर्चा कर रहे हैं, करूंगा मैं। अब साधारण विचार क्या है, ये भौतिक जगत, इस भौतिक जगत ही केवल क्या एक जगत है, ना कि इसके अलावा और कोई कुछ और एक जगत है, है? कौन मानते हो है? बहुत अच्छा, तो सब मान लेते हैं वो। अच्छा, तो इस भौतिक जगत के वो जगत जो है वो भौतिक जगत के परे है, और इस भौतिक जगत के परे और एक जगत है। हम भौतिक जगत का जियोग्राफी पढ़े हैं, हाँ, स्कूल में। कौन कौन भौतिक जगत का जियोग्राफी पढ़े हो? तो इस जगत का जो जियोग्राफी है उसका विचार कैसा है, हाँ? इस पृथ्वी है और सौर मंडल है, सूर्य है और सूर्य के चारों ओर नव ग्रह घूम रहा है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चंद लोग हैं घूम रहा है, और ऐसे बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं इस ब्रह्मांड में। ये तक ही भूगोल का विचार है, और ये भूमंडल या पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी में कितने समुद्र हैं, महासागर, पांच महासागर हैं, और कितने महादेश हैं, सात महादेश हैं, छह, और एक नया निकला है आजकल। तो ये साधारण विचार है, बल्कि वेद का जो विचार है और वो विचार इससे भी और गहरा है, और भी अधिक इंफॉर्मेशन उसमें है। कैसे एक ब्रह्मांड जो है वैदिक विचार में, ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी का ब्रह्मांड का एक अंश है जिसे भूमंडल कहा जाता है, भूलोक। बल्कि एक एक ब्रह्मांड में 14 लोक है, चतुर्दश भुवन, सात ऊपर का और सात नीचे का, और ये जो बीच में जो है, ये 14 में से जो सातवां जो है वो है ये भूमंडल, पृथ्वी, भूलोक, और इसके ऊपर भूलोक के ऊपर और 6 लोक हैं, भूलोक उसके ऊपर है, भूवलोक, स्वर्गलोक या स्वर्गलोक उसके ऊपर है, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, और नीचे का भी 7 लोक हैं जिसे सप्त पाताल कहा जाता है, तल, अतल, बीतल, सुतल, महातल, रसातल और पाताल, ये नीचे का 7 है। तो ये 14 लोक लेकर एक ब्रह्मांड होता है, और वैसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, अगणित ब्रह्मांड है, और ये सारे ब्रह्मांड कुल मिलाकर ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड सारे ब्रह्मांड कहाँ है, ब्रह्मांड है कारण सागर में, जहां भगवान कारण लोकदोषायी विष्णु या महाविष्णु लेटे हुए हैं कारण सागर में, और महाविष्णु जो श्वास ले रहे हैं उस श्वास के कारण जो बुदबुदा निकल रहा है वो एक एक बुदबुदा है, एक एक ब्रह्मांड, और महाविष्णु केवल नाक से और मुख से ही केवल श्वास नहीं ले रहे हैं, उनके रोम रोम से भी ले रहे हैं, रोमकूप से भी लेते हैं। तो महाविष्णु का शरीर अनंत है या सीमित है? अनंत है। तो महाविष्णु का शरीर में लोम कितने हैं? वो भी सीमित है या अनंत है? और उनके सारे रोमकूप से अगर एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है तो वो ब्रह्मांड भी सीमित है या अनंत है? तो ये भौतिक जगत भी अनंत है। और ये भौतिक जगत के पड़े हैं आध्यात्मिक जगत, उसका भी वर्णन कैसा हुआ है। ये क्या मैं मेरा कल्पना से कह रहा हूं, तो मैं किस आधार पर मैं कह रहा हूं? शास्त्र के आधार पर। और हर शास्त्र में एक ही वर्णन हो रहा है। हमारा शास्त्र में चाहे कोई भी शास्त्र हो उसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। कंट्रडिक्शंस का हिंदी क्या है?
मतभेद।
मतभेद, राइट। ये शास्त्र में मतभेद नहीं हो रहा है, सारे शास्त्र में एक ही वर्णन हो रहा है। जैसे तुम्हारा जो भूगोल का जो किताब है, चाहे एक भूगोल मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी का है और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, एक मद्रास यूनिवर्सिटी का है, ये भूगोल का जो वर्णन है वो यूनिवर्सिटी का अंतर होने से क्या भेद होगा? मतभेद होगा? नहीं। वैसे ही जो तत्व जो सही है उस ज्ञान में कोई मतभेद नहीं होता, और उसी के आधार पर हम कह रहे हैं। तो ऐसे अगणित ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में, मतलब भौतिक जगत भी अंतहीन है, बल्कि ये भौतिक जगत भगवान का शक्ति का, भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है उसका एक छोटा सा अंश है। तो देखो आध्यात्मिक जगत तब कैसा होगा? एकांशेन स्थित जगत, भगवान का ये जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये भौतिक जगत जो है ये भगवान का निकृष्ट प्रकृति है, और भगवान का आध्यात्मिक जगत जो है वो है परा प्रकृति या उत्कृष्ट प्रकृति। निकृष्ट प्रकृति क्या है? निकृष्ट का मतलब क्या है? ये जो स्थान ये अचेतन है, और आध्यात्मिक जगत पूर्ण चेतन। तो हम लोग जो चेतन हैं, हम चेतन हैं, तो हम हमारा ये जो चेतना, ये चेतना कहाँ से आ रहा है? चेतना कहाँ से आ रहा है? आध्यात्मिक जगत बल बोले हैं, तो इसका मतलब आधि आत्मिक है ना, जो जगत आत्मा की जगत है। तो हमारा चेतना कहाँ से आ रहा है? आत्मा से। ये शरीर में जब तक आत्मा रहता है शरीर जिंदा रहता है, जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है, आप देखे हैं ना किसी का मौत हुआ है, मृत्यु के पश्चात कैसा लगता है? जो आदमी बात कर रहा था, सोच रहा था, घूम रहा था, झगड़ा कर रहा था, प्यार कर रहा था, खाना खा रहा था, रात को सो रहा था, वो एकदम अचल हो गया है। क्यों? आत्मा चले यहां से कहां? तो ये आत्मा कहां से आता है? अच्छा, कहां से आने के पहले इस आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए या नहीं? हाँ, आत्मज्ञान लाभ करना चाहिए या नहीं? चाहिए। मैं कौन हूं ये जानने का जरूरत है। फलाना आदमी सोचते हैं, आम आदमी सोचते हैं कि मैं मेरा शरीर हूं। जब मैं पूछते हैं आप कौन हैं, वो बोलते हैं मैं, मेरा नाम बताते हैं, उनका नाम बताते हैं, अपना पिताजी का नाम बताते हैं, मैं उनका लड़का हूं, मैं ये कर रहा हूं, बल्कि ये सारे परिचय जो है वो परिचय किसका है? शरीर का है। बल्कि ये शरीर को जो परिचय के आगे परे जो आत्मा है उसको परिचय निकलना चाहिए। हाँ, ये जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए। और इस ज्ञान हमारे शास्त्र में सही रूप से वर्णन हुआ है, और इस ज्ञान प्रचार करना ही जो साधु लोग हैं उनको असल कर्तव्य होना चाहिए। साधु कौन है? साधु का मतलब जो सत है। इसका सरल विचार क्या होता है? साधु है वो जो सच कहता है, सच कहता है। सत्य क्या है? सत्य, असल सत्य क्या है? शास्त्र में जो वर्णन हुआ है वो है असल सत्य। और जो हमारे भौतिक जगत का जिसने कृत किताबें हैं उसमें जो वर्णन हुआ है वो है रिलेटिव ट्रूथ, नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ का हिंदी क्या होगा? आपेक्षिक तथ्य, सत्य। और किसी के आधार पर अपेक्षा करके वो सत्य हुआ है। जैसे बोलता है कि आपका नाम क्या है, वो नाम बता दिया, तो अगर पूछेंगे ये आपका नाम है, हाँ? ये आपका नाम क्या है, ये आपका नाम है, वो बोलेगा हाँ। आप फिर पूछेंगे आपका नाम है, हाँ? मतलब आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं या झूठ गलत कह रहे हैं? ये आप नाम जो है ये नाम आपेक्षिक सत्य है, सही सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है। क्योंकि अगर पहले तो बात यह है कि ये नाम किसका है? ये शरीर का है। आप क्या शरीर है? नहीं, शरीर आपका है, बल्कि आप शरीर, आपका शरीर नहीं है। तो ये जो आप जो हैं, ये शरीर का नाम हो सकता है। आपका पिताजी कौन है? बता दिया। वो क्या आपका पिताजी है? ये भी आपेक्षिक शब्द है, क्योंकि ये पिता जो है ये शरीर का पिता है, माता जो है शरीर का है। ये जो परिचय भौतिक परिचय शरीर का है, बल्कि असल परिचय क्या, किसका है? आत्मा का। तो अब बताइए आपका आत्मा का नाम क्या है? आप बोलेंगे पता नहीं। आपका आत्मा का पिता कौन है? पता नहीं। तो मतलब क्या हुआ? हम सब मूर्ख हैं, अपने बारे में भी पता नहीं है, मैं कौन हूं ये पता हमको नहीं है। तो ये पता लगाना चाहिए, तो इसका कोशिश जो है वही हमें करना चाहिए, और इस ज्ञान हमें मिलेगा। जैसे आप के कहां के रहने वाले हैं, जब परम सत्य के बारे में हम सोचेंगे तब बोलेंगे मैं तो असल में आध्यात्मिक जगत का रहने वाला हूं, यहां कुछ दिन के लिए आया हूं घूमने के लिए, मैं यहां के रहने वाले नहीं हूं। तो जब आया है यहां का फायदा उठा रहा हूं, यहाँ का मजा उठा रहा हूँ। जैसे कभी जब हम घूमने को जाते हैं कहीं, हाँ, गए हैं घूमने को दिल्ली या कश्मीर, ठीक है चलो गए हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ है, बल्कि घर वापस आना होगा। वो जगह जो है वो हमारे असल रहने का जगह नहीं है। हम, मैं जो हूँ, मेरा रहना कहाँ है? आध्यात्मिक जगह। तो हम अगर रास्ता भूल गया, रास्ता खो गया है, तो हमें क्या करना होगा? उस जगत में जाने का रास्ता ढूंढना होगा। तो मैं रास्ता कश्मीर गया था, रास्ता भूल गया उज्जैन आने का, तब क्या करना होगा? वहां जाके किसी को, ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसको पता है कैसे उज्जैन वापस आना चाहिए, और उसके साथ हाँ ऐसे संपर्क जोड़ने के पश्चात हमें पता चलेगा हाँ कैसे हम यहाँ आ सकते हैं। तो वैसे ही हम घूमने के लिए आया था और हम राहा खो गया, तो अब क्या करेंगे? इसलिए आप लोग मंदिर में आ रहे हैं। मंदिर में जो भक्त लोग हैं उसको पता चल गया है, वो जानते हैं रास्ता कहाँ है, असल जगह कहाँ है, हमारा असल रहना कहाँ है, और कैसे हम वहां वापस जा सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमको सोचना पड़ेगा कि उस मेरा जो रहना जो है वो जगह का जियोग्राफी कैसा है, तब हमको पता चलेगा कैसे हम जा सकते हैं। तो जियोग्राफी कैसा है, जैसे कश्मीर के बाद है जम्मू, जम्मू के बाद है पंजाब, पंजाब के बाद है उत्तरांचल, उत्तरांचल के बाद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद है मध्य प्रदेश। तो ऐसे घूमते घूमते हमको आना हो, काफी दूरी है, बल्कि कोई अगर हमको एकदम श्रीनगर से इंदौर आने का एक प्लेन टिकट दे दिया तो क्या हमको उतना घूमना होगा? नहीं, झट से ही हम यहाँ आ जाएंगे, और जब हम इंदौर पहुंचेंगे तो घर से एक टैक्सी भी चला जाएगा, वहाँ गाड़ी भी चला जाएगा हमको लाने के लिए। तो वैसे ही हम इतने आसानी से हमारा जो घर है, सही घर जो है, वहाँ वापस जा सकते हैं। अगर ऐसे कोई व्यक्ति के साथ हमारा परिचय हो जाए जिसको सही रूप से पता है हमारा असल घर कहाँ है और कैसे वहाँ जाना है। तो आप लोग मंदिर में क्यों आते हैं, मंदिर में क्यों आते हैं, क्यों मंदिर में आना चाहिए? हाँ, क्या हुआ?
घर का पता जानने,
हाँ घर का पता और घर वापस जाने का आयोजन करने के लिए। ठीक है, हो रहा है, बहुत अच्छा। ट्रेन का ट्रेन नहीं प्लेन का टिकट मिल गया जरूर मिल गए हैं। तो उसका थोड़ा वर्णन मैं ऐसे दूंगा, आध्यात्मिक जगत का। इस भौतिक जगत के परे है चिदाकाश। जैसे इस भौतिक जगत का आकाश है, आकाश मतलब जो स्थान जहां इसका स्थिति है, इस जगत का स्थिति है, ये आकाश है भौतिक। बल्कि भौतिक जगत के परे है चिदाकाश, ब्रह्मांड। अच्छा, पहले जैसे मैं बताया था एक एक ब्रह्मांड है, एक एक बुदबुदा। तो ये जो है ये बुदबुदा कहां निकल रहा है? कारण समुद्र में, कारणवाड़ी में। अच्छा, ये जो कारणवाड़ी, इसका भी वर्णन हमारा शास्त्र में ऐसे हुआ है, विराजा के रूप। इस भौतिक जगत के परे है विरजा, विरजा, विरजा के परे है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति ये है, ब्रह्म ज्योति है चिदाकाश, भौतिक जगत का आकाश, ज्योतिर्मय है। गीता में आप लोग गीता पढ़ रहे हैं ना? हाँ, केवल एक उत्तर आया पढ़ा और बाकी सब ना है क्या? बाकी सब खामोश रह गया, मतलब क्या है? हाँ या ना? ओके, थैंक यू। तो गीता आप सब पढ़ रहे हैं, गीता में भगवान आध्यात्मिक जगत का वर्णन कैसे दिए हैं किसको पता है? हाथ उठाना। ओके, अच्छा, हाँ लास्ट हाथ, तुम बताओ कैसा वर्णन हुआ है आध्यात्मिक जगत का? वेरी गुड, वेरी गुड। आध्यात्मिक जगत का वर्णन भगवान कैसे दे रहे हैं? न तद भाषयते सूर्य, भाषयते मतलब भा का मतलब है ज्योति, उस जगत में ज्योति लाने के लिए, उस जगत को ज्योतिर्मय बनाने के लिए ना तो सूर्य का, न तद भाषयते सूर्य, न शशांक, न तो शशांक का मतलब है चंद्र, ना तो सूर्य का जरूरत होता है, ना तो चंद्र का जरूरत होता है, न तद भाषयते सूर्य, न शशांक, न पावक, न तो अग्नि का। इस भौतिक जगत में ज्योति कहां से मिल रहा है? इस भौतिक जगत अंधेरा है, और यहां पर ज्योति कहां से मिल रहा है? आग से, नहीं तो चंद्रमा से, नहीं तो सूरज का किरण से। बल्कि उस जगत में न तो चंद्र का, न सूर्य का, न पावक या अग्नि का जरूरत होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो जगत सत ही ज्योतिर्मय है। उस जगत ज्योतिर्मय है, जो जगह ज्योतिर्मय है वहां ज्योति लाने का क्या जरूरत होगा? नहीं। तो ये ज्योति जो है उसको क्या कहा जाता है? उस ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, ब्रह्म ज्योति। हम ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं ना, तो ये ब्रह्म ही वो ज्योति है। और वो ज्योति कैसी है? चिन्मय ज्योति। वो ज्योति का कण जो है कैसे, ये आत्मा को भी ब्रह्म कहा गया है, आत्मा नाम ब्रह्म। तो ब्रह्म आत्मा है, और आत्मा ये उस ब्रह्म ज्योति का कर्ण है। ब्रह्म, एक एक ब्रह्म ज्योति का जो कर्ण है, ज्योति का प्रभाव कैसे होता है? कण कण से होता है ना, किरण कण। सूरज का किरण कैसे आता है? एज रेज। तो हम सब है ये उस ब्रह्म ज्योति का कण, आत्मा। तो वो आत्मा कहां से आ रहा है? आत्मा परम आत्मा से आ रहा है। हम सब है आत्मा, और भगवान है परम आत्मा। तो भगवान वहां पर विराज करते हैं अपने भक्तों को साथ। जो आत्मा को भगवान के साथ संपर्क, जो संपर्क बन चुका है, वो भगवान के साथ रहता है। और जो भगवान से अलग हो गया है, वो इस भौतिक जगत में आ गया, निकल गिर गया। हम लोग इस भौतिक जगत में गिरे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। अब सोचो, भगवान के साथ संपर्क है? संपर्क था भगवान के साथ? था या था? तब यहां क्यों आए हैं? वहां टूट गया था, तो मतलब है नहीं, बन रहा है। अब बन रहा है, जब हम संपर्क बन जाएगा तब हम इस जगत में नहीं रहेंगे, तब हम भगवान के पास, भगवान के साथ रहें। इस जगत में रह सकते हैं, जैसे कारागार में राजा का आदमी भी कभी कभी काम करता है, तो वो क्या कैदी है ना? क्यों नहीं? क्योंकि राजा का साथ उसका संपर्क है। कैद खाना में रहते हुए भी वो राजा का साथ संपर्क, जो संपर्कित है। वैसे ही इस भौतिक जगत रूप कारागार में जो भगवान के साथ संपर्क बना लिया है, वो भगवान का साथी है, वो भगवान से अलग नहीं है। तो इस आध्यात्मिक जगत में, चिन्मय जगत में, एक है ब्रह्म ज्योति, पहला स्थिति है ब्रह्म ज्योति, उसके परे है वैकुंठ लोक, जहां नारायण विराजमान है। वैकुंठ लोक के परे है वृंदावन, जहां भगवान श्री नंद महाराज के पुत्र के रूप में विराज कर रहे हैं, नंद नंदन श्री कृष्ण। वैकुंठ और वृंदावन में अंतर क्या है? वैकुंठ और वृंदावन का अंतर, वैकुंठ और वृंदावन में अंतर क्या है? वैकुंठ में सबको पता है कि नारायण भगवान है और सब संभ्रम के साथ श्रद्धा के साथ भगवान को सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा जो है, ये सेवा दास्य भाव में, दास के रूप में होता है। तो भगवान के साथ और तीन संपर्क हो सकते हैं। हमारे संपर्क जब विचार करते हैं, हम देखते हैं कितने तरीका का और कितना तरह का संपर्क होता है। हाँ, पांच संपर्क होता है। एक है शांत। शांत का मतलब हाँ, तुम भी हो मैं भी हो, या आप भी हो मैं भी हो, बल्कि आपका साथ मेरा संपर्क नहीं है, कुछ लेन देन नहीं हो रहा। जैसे कुछ पड़ोसी ऐसे हैं ना, हम देखते हैं वो है, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बाजार जाते हैं, घर वापस आते हैं, बल्कि मैं देखता हूँ वो आता जाता है, मैं देखता हूँ कि वो है, बल्कि उसका साथ कोई संपर्क नहीं, बातचीत नहीं होता है, लेन देन नहीं होता है। तो इसके परे, तो ये संपर्क जो है, ये शांत रस कहा गया है। तो इसके परे और एक प्रकार का संपर्क होता है, जिस जैसे नौकर और मालिक का संपर्क। आपका घर में जो नौकर है उसके साथ आपका संपर्क वो पड़ोसी से भी गहरा है, है ना। तो शांत के परे है दास्य। तो आपका नौकर का साथ जो ऐसा जो संपर्क है, आपका दोस्त के साथ संपर्क उससे भी बढ़कर है। आपका जो मित्र है उसके साथ आपका जो संपर्क वो और भी गहरा है। आपका पिता माता के साथ आपका जो संपर्क है, वो संपर्क आपका दोस्त से भी अधिक है। और आपका पत्नी के साथ आपका जो संपर्क है, पति पत्नी के बीच जो संपर्क है, वो संपर्क पिता माता से भी गहरा है। तो ऐसे हम देखते हैं कि कितने प्रकार हुआ है, पांच प्रकार का। इसके अलावा और कोई संपर्क है? हम तो पांच विचार किया, और कोई संपर्क आपको मन में है?
हमेशा याद आते हैं।
किसका? तो गुरु का मतलब, गुरु शिष्य का मतलब, प्रभु और भृत्य का, प्रभु और भृत्य का संपर्क। ये संपर्क जो है, मेरा कहने का मतलब है, संपर्क पांच प्रकार का होता है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो ये जो पांच संपर्क, तो ये संपर्क अगर हमारे बीच होता है तो भगवान के साथ भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ है आध्यात्मिक जगत में भी होना होगा, नहीं तो यहाँ कैसे आया है, कैसे हुआ है। तो भगवान के साथ वैकुंठ में हम देखते हैं केवल दो प्रकार के संपर्क हैं, एक तो शांत और दास्य। वहां सख्य, वहां कोई भगवान का मित्र नहीं है, सखा नहीं है। सखा मतलब सख्य रस जो है वो समान बराबर के बीच होता है। वात्सल्य, पिता माता के साथ पुत्र का जो संपर्क, तो भगवान पुत्र के रूप में छोटा हो जाता है और पिता भक्त भगवान से बड़ा हो जाता है। और प्रेमिक प्रेमिका का बीच जो संपर्क, वैसा संपर्क भगवान और भक्त में जो बनता है उसे मधुर रस का संपर्क कहा जाता है। तो ये तीन संपर्क भगवान के साथ संभव होता होगा जब तक भगवान को भगवान के रूप में हमें हम देखेंगे, तब तक ये संपर्क नहीं होगा। क्योंकि भगवान को अगर हम समझ लिया कि ये पहचान लिया कि भगवान है, तो उनके साथ श्रद्धा पूर्वक उसके पास हाथ जोड़ के उनके पास वंदना करेंगे, स्तुति करेंगे, सेवा करेंगे। तो भगवान के साथ ये जो संपर्क है, ये संपर्क न तो दास, इसलिए सखा के रूप में, पिता माता के रूप में और प्रेमिका के रूप में संभव नहीं होता साधारणतया। बल्कि भगवान सोचते हैं तो हमारे लिए ये संपर्क तो हमारे लिए जरूरी है, हम तो चाहता हूँ कि भक्त के लिए, भक्त के साथ मेरा ऐसे संपर्क बने। तो इसलिए भगवान क्या किया, एक ऐसा जगह बनाया जहां किसी को पता नहीं है कि भगवान भगवान है, मतलब भगवान वहां भगवान न बनकर भगवान छोटा हो गया, भगवान भक्तों का बराबर बन गया, भगवान भक्त से छोटा बन गया, भगवान भक्त का प्रेमिक बन गया। वो स्थान है वृंदावन। तो ये संपर्क बनाने के लिए भूलना चाहिए कि भगवान भगवान है। अगर याद रहेगा कि भगवान भगवान है तो ये संपर्क संभव नहीं। जैसे याद अगर है भगवान भगवान है तो हम क्या भगवान के वो दोस्त के बीच साथ जैसे संपर्क होता है, उसके कंधे पर हाथ लगा के, हाथ रख के वैसे संपर्क हम बना सकेंगे? नहीं तो कभी कभी दोस्तों के बीच लड़ाई होता है, कुश्ती होता है, तो कुश्ती के समय क्या करते हैं, पैर लग जाता है शरीर में, है ना, कभी कभी उसको कंधे में चढ़ने का भी इच्छा होता है तो उसका शरीर में पैर रखकर उसके कंधे में चढ़ना होता है। तो मतलब ये है, जब अगर भगवान के भगवान भगवान है ये अगर याद रहेगा तो कभी ऐसी संपर्क संभव होगा नहीं। तो इसलिए वृंदावन ऐसी एक स्थान है जहां भक्त लोगों का पता नहीं है, याद नहीं है कि भगवान भगवान है। ये भगवान का ही आयोजन है, योग माया के द्वारा भगवान ऐसी आयोजन किए हैं। वहां भगवान सबको भुला दिया कि भगवान भगवान, ये जो विस्मृति जो है इसे माया कहा जाता है। माया का मतलब है विस्मृति, भूल जाते हैं। तो विस्मृति या भूल जाना दो तरीका का हो सकता है, एक तो अज्ञान के वश, अज्ञान के कारण हम भूल जाते हैं जिसे महामाया कहा जाता है। इस भौतिक जगत में हमारे अज्ञान के कारण हम भूल गए हैं कि भगवान भगवान है। बल्कि और एक प्रकार का विस्मृति होता है जिसका कारण है प्रेम, प्रेम के कारण, प्यार के कारण हम कभी कभी उस व्यक्ति का जो स्थिति है वो भूल जाते हैं। जैसे लड़का मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री बना है, ऐसा नहीं कि माँ को पता नहीं है कि उनका लड़का मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री है, बल्कि माँ के लिए ये मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री कोई बड़ी बात नहीं है। असल में उनका जो संपर्क है, हाँ ये मेरा बेटा है, चाहे वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने या कोई भी बने, कुछ भी बने, न भी बने, तो भी ये मेरा बेटा है। क्यों ऐसी भावना कैसे होता है, प्यार के नाम। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, बल्कि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वृंदावन जो है वहां भक्त लोग भगवान के साथ उनका संपर्क के कारण भूल गए हैं कि भगवान भगवान है। पता है कि भगवान कृष्ण भगवान है, बल्कि कोई बात नहीं, तुम भगवान हो तो क्या हुआ है तुम मेरे दोस्त हो, तुम भगवान हो तो क्या हुआ है, तुम मेरा बेटा हो, तुम भगवान हुआ तो क्या है, तुम मेरे प्रेम प्यार के संपदा। तो ये है वृंदावन का स्थिति। तो आप पता चला आध्यात्मिक जगत का कितने विभाग हैं, कितनी विभागें हैं, कितने हैं आध्यात्मिक जगत का? कृष्णदास दो या तीन? ब्रह्म ज्योति, वैकुंठ और वृंदावन, और इसके बीच में और एक जगह है जिसके बारे में मैं नहीं बताया था, वो है शिव जी का स्थान महेश धाम, ब्रह्म ज्योति के परे वैकुंठ के नीचे है महेश धाम। इसका वर्णन कहां हुआ है? श्रीमद् भागवतम में हुआ है। और कहां हुआ है? बृहद भागवतम में हुआ है। और कहां हुआ है? ब्रह्म संहिता। ये श्लोक किसको याद है? कौन श्लोक में इसका वर्णन हुआ है ब्रह्म संहिता में? गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु तेते प्रभाव निचया विहिताश्च जीवना गोविंदमादि पुरुषम तमः। गोलोक के नीचे क्या है? हरिधाम मतलब वैकुंठ, और उसके पश्चात महेश धाम, और उसके नीचे है देवी धाम। देवी धाम मतलब जो स्थान देवी का है। देवी का मतलब कौन है? देवी कौन है? देवी दुर्गा देवी या महामाया। इस जगत का रखवाला कौन है? दुर्गा देवी या महामाया। इसलिए इस जगत का नाम है देवी धाम। देवी महेश, देवी धाम के पड़े हैं महेश धाम, शिव जी का धाम, और शिव जी का धाम का पड़े है क्या? वैकुंठ धाम या हरि धाम, और उसके पड़े हैं गोलोक। तो बात क्या ऐसा है कि चूंकि हम लोग कृष्ण का भक्त हैं तो इसलिए हम ऐसे बोलते हैं। अगर ऐसे हम उल्टा सीधा बोलेंगे तो याद रखना है कि अगर शिव जी नाराज होंगे तो उनका त्रिशूल लेके हमको ये भी याद रखना चाहिए। बल्कि अगर हम सही बात कह रहे हैं तो शिव जी हमारे प्रति प्रसन्न होंगे। शिव जी के स्थान पर बैठ के हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? शिव जी के प्रसन्नता के लिए ही हम कह रहे हैं। शिव जी बोलेंगे बहुत अच्छा बेटा, तुम सही बात कह रहे हो, मेरा प्रभु का महिमा तुम कीर्तन कर रहे हो, इसे इसलिए मेरा बहुत प्रसन्नता हो रहा है। भक्त जब भगवान का महिमा का प्रचार देखते हैं तो भगवान का भक्त का मन में कैसा लगता है? भक्त का मन में आनंद होता है। वैष्णवानां यथा शंभु, सारे वैष्णवों में से श्रेष्ठ स्थान शिव जी का। एक रूप से शिव जी वैष्णव है और एक रूप से शिव जी भगवान का ही अवतार है। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते नहीं ततः पृथक अस्ति हे तो ज शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यः। भगवान शिव जी के रूप क्यों लिए हैं? क्योंकि इस माया के साथ संपर्क स्थापन करने के लिए ये रूप लेना पड़ा, क्योंकि माया भगवान का बहिरंगा प्रकृति है, अलग प्रकृति है। तो अलग प्रकृति के साथ क्या डायरेक्ट संपर्क स्थापन संभव होगा? तब तो अलग नहीं रहेगा। अलग का मतलब उसके साथ संपर्क डायरेक्ट नहीं है। तो उस अलग प्रकृति परा प्रकृति के साथ संपर्क जोड़ने के लिए भगवान शिवजी के रूप में शिवजी के रूप लिए। संभुताम अपि तथा समुपैति कार्य, कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए भगवान शिवजी के रूप लिए। तो आप विचार कीजिए, माया महामाया दुर्गा, दुर्गा का पति कौन है? तो वैसे शिव माया के साथ संपर्क जोड़ने के लिए भगवान शिव जी के रूप में प्रकट हुए। इसलिए इस शिव जी के स्थान में अगर हम भगवान का महिमा कीर्तन करेंगे तो शिव जी क्या प्रसन्न होंगे, ना क्या नाराज होंगे? अगर नाराज होते तो हम हमारा हाल एकदम खतरनाक हो जाता था। बल्कि शिव जी आशुतोष हैं, थोड़ा सा कुछ करने से ही शिव जी का प्रसन्नता होता है। विशेष रूप से शिव जी जब देखते हैं भगवान का महिमा कीर्तन हो रहा है तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव जी जब देखते हैं हम भगवान का भक्त बन रहे हैं, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हम अगर शिव जी के पास जाएंगे तो शिव जी क्या बोलेंगे, मेरा भक्त बनो या भगवान का भक्त बनो? जैसे कोई अगर तुम्हारे पास आया तो तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे भक्त बनने के लिए बोलोगे या भगवान का भक्त बनने के लिए? बल्कि हम लोग क्या बोलेंगे, हम शिव जी के भक्त हैं, और शिव जी बोलेंगे तुम भगवान का भक्त बनो। हम बोलेंगे मैं आपका आपके माध्यम ही, आपकी कृपा से ही भगवान का सेवा करने का कोशिश कर रहा हूं, आप हमें कृपा कीजिए। और शिव जी जब प्रसन्न होंगे तो भगवान की सेवा भी हम आसानी से कर सकते। जय श्री श्री महाकालेश्वर की
जय।
जय श्री श्री शंकर भगवान की
जय।
जय श्री श्री कृष्ण भगवान की
जय।
जय श्री श्री कृष्ण बलराम की
जय।
जय श्री श्री राधा मदन मोहन की
जय।
जय श्री श्री गौरताई की
जय।
समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंद। कोई प्रश्न है किसी को?
आपने कहा कि माधुर्य रस वात्सल्य रस से ऊपर है, बल्कि वात्सल्य रस में कभी शासन कर सकता है भक्त भगवान को, जैसे यशोदा माँ शासन करती है, बल्कि माधुर्य रस में क्या कृष्ण की पत्नियां शासन नहीं कर पाते?
माधुर्य भी दो प्रकार का होता है, एक है स्वकीय एक है परकीय। एक है पति पत्नी का जो संपर्क और एक है प्रेमिक प्रेमिका का जो संपर्क। और पति पत्नी के संपर्क में भी शासन होता है। झगड़ा लड़ाई भी होता है। कभी कभी प्यार के नाते बोलते हैं दिखा जाओ। हरे कृष्ण।
यस जब इस ब्रह्मांड का दाम चल रहा था कि आज सदा सिद्ध का दर आते हैं ना, ये
हाँ
जब इस ब्रह्मांड का दाम चल
रहा ब्रह्मांड का
ब्रह्मांड बिना संशय तब ये क्या सदा सिद्ध का दर आते हैं ना, क्या
सदाशिव के द्वारा होता है या?
हाँ, विनाश कार्य शिव जी के द्वारा होता है। देखिए अनिरुद्ध, देखिए और कमी। ओके हाँ बताइए।
नरे हे करवाणी जीवी दशे चत्तम से एवं तो इन्हें तो वत्ना कर लेते थे। बहुत जगह जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है, जातः से मृत्यु ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृत्यु, तो उसकी ये भौतिक लीला समाप्त हो गई, ये यात्रा उसकी, ये शरीर की यात्रा पूर्ण हो गई।
अच्छा कौन बताया?
प्रार्थना कर रहा हूँ।
अच्छा देखिए, शरीर दो प्रकार का है, भौतिक शरीर भी दो प्रकार का है, एक है स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। मृत्यु के समय हम स्थूल शरीर को त्यागते हैं, बल्कि सूक्ष्म शरीर रह जाता है साधारणतया। ये सूक्ष्म शरीर हमको अगला जन्म में अगला शरीर प्राप्ति के लिए ले जाता है।
तो अगला जन्म जो है वो अनंत लोक की, ये शरीर तो हमारा खत्म हो गया, तो ये तो हमने पूरा जीवन काट लिया, अब जो जीवन दूसरा अनंत लोक की यात्रा है, जो लोग कैसे चलेगा?
अनंत लोक तब तक रहेगा जब तक घूमते रहेंगे। ये संसार, संसार मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर। तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर रोकना है या उसमें घूमता रहना, आप बताइए क्या चक्कर क्या चाहिए?
सत्संग मिलता रहे तो चक्कर हमें ठीक है।
तो ये सत्संग में तो ये पता चलेगा, सत्संग में पता चलता है कि ये जन्म मृत्यु का चक्र, हम संसार चक्र जो है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसका नाश कैसे कर सकते हैं। जब भगवान का सेवा शुरू होता है उसके कारण धीरे धीरे ये सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो जाता है। मन बुद्धि और अहंकार इसका मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु ये पंचभूतात्मक जो है क्षिति अप तेज मरुद बम से बना हुआ जो ये पंचभूत का जो शरीर है उसका नाश होता है, बल्कि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर जो है वो भी आत्मा का आवरण है, उसका नाश नहीं होता बल्कि उसका परिवर्तन होता है। जैसे मन मना भव, मन के द्वारा जब भगवान का चिंतन होता है तब मन और भौतिक नहीं रहता है, तब मन आध्यात्मिक बन जाता। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम। जो निरंतर भगवान को सेवा में युक्त होता है तो उसका बुद्धि जो है उसका परिवर्तन होकर भगवान उसको बुद्धि योग या आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं। और वैसे जब कोई भगवान को सेवा में युक्त हो जाते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तब अहंकार जो है अपना गलत परिचय जो है उसको भी परिवर्तन होकर आत्मिक स्वरूप में भगवान को दास बन जाता है, तब और सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है। तो इस स्थिति को स्वरूप सिद्धि कहा जाता है। निखिलाशोपी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते, ऐसी स्थिति को जीवन मुक्त कहा गया है और स्वरूप सिद्धि कहा गया है। स्वरूप में स्थिति हो गए हैं, सूक्ष्म शरीर नहीं है, शुद्ध आत्मा ये स्थूल शरीर में है। और स्थूल शरीर का जब नाश होता है तब वो भगवान को पास वापस जाता है, तब आप जो बोले हैं अनंत यात्रा खत्म हो जाता है, है? और इस चक्कर में घूमना नहीं पड़ता है। तो मैं आप क्लास खत्म करेंगे क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदी।